हालत, वो कहने लगी, अब परेशानी तो ये लगी है ना, अब कैसे ही होगा अल्लाह, रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, ना मेरे बेटा कैसे होगा, बच्चा कैसे होगा, वलम यमससनी बशर। अब ये नहीं था उनको कोई शक था कि अल्लाह ताला कैसे ये कर सकता, नहीं, इसलिए कि वो जैसा उनका मकाम और मर्तबा है अल्लाह ऐसे ही नहीं चुन लेता। तो हमें पता है कि वो जिस कदर नेक और पाक बीबी थी, वो ये नहीं कह रही कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा, वो कह रही है लेकिन अल्लाह कैसे होगा, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह कैसे तू तो जिंदा करता है मुर्दों को, मुझे तो पता चले, मुझे दिखा तो सही, अल्लाह ताला कैसे होगा, मेरे तो एक नेचुरल रिएक्शन है ना, मुझे तो किसी ने छुआ भी नहीं, यानी असबाब के तहत उस दुनिया के अंदर चीजें होती है, मुझे तो किसी ने नहीं छुआ, छुए से मतलब क्या है कि मतलब मेरे साथ तो अमले जौजियत किसी ने नहीं किया। फरमाया कदालिकिल्लाहु यखलुकु मा यशा, इसी तरह अल्लाह ताला पैदा करता है जो चाहता है, अल्लाह की कुदरत में है, मुर्दे से जिंदा निकाल दे, जिंदा से मुर्दा कर दे, बिन माँ बाप के भी बच्चा पैदा करते, कि आदम अलैहि सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया कि बिन माँ बाप के पैदा हुए ना, तो इस तरह अल्लाह ताला चाहे तो बिन वालदैन के पैदा कर दे, और अल्लाह चाहे तो बिन बाप के पैदा कर दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, और सारी दुनिया को विद माँ बाप पैदा कर दे, तो अल्लाह जैसे चाहे पैदा कर दे, वो वसाइल का मोहताज नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, हाँ उसने दुनिया का निजाम चलाने के लिए असबाब पैदा किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असबाब के बगैर कर नहीं सकता, ये है ईमान कि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। इसी से मुझे एक बात याद आई, किसी ने मुझे कहा कि वो कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई और वो चाहती नहीं थी कि ये बच्चा पैदा हो, क्योंकि चौथा बच्चा था, तो कहने लगी कि मैंने इतना जोर लगाया कि मैंने अपने पेट के ऊपर सिलेंडर तक रखे, भागी दौड़ी ऊपर नीचे, जिस जो भी मैं कर सकती थी ना, कहती हैं कि मैंने अपनी हत्तहुल इम्कान कोशिश कर ली कि ये बच्चा गिर जाए किसी तरह, लेकिन वो बच्चा पैदा हुआ, माशाल्लाह अब तो जवान हो गया, लेकिन देखें अल्लाह जो चाहे पैदा करे वो उसकी मर्जी है, और कहीं बहुत एहतियातें होती हैं और बच्चा फिर भी नहीं रहता, तो ये अल्लाह की मर्जी है, उसकी मशीयत है, वो जैसा चाहे पैदा करे और जिसको चाहे पैदा करे। ये तो हमारे ही होते हैं ना क्वेश्चंस, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, अब ऐसी कोई बात हम देखें ये हो कैसे सकता है, हम जरा सी कोई चीज देखते हैं ना तो हम कहते हैं ये कैसे, हम ये नहीं सोचते अल्लाह ताला जो चाहे करे। इदा कदवा अमरन फइन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून, उसके लिए तो इतना आसान है, इतना आसान है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है या किसी काम का फैसला कर लेता है कि ये होना है, तो उसने बस ये कहना होता है कुन, हो जा, तो वो हो जाता। सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने कलमा कुन से ही तो पैदा किया, जैसे मैं आपको तीन चीजें बताती हूँ अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा की, कलमा कुन से पैदा की अल्लाह ताला ने, इस जमीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले कलम को पैदा फरमाया और उससे फरमाया लिख, तो उसने कहा अल्लाह क्या लिखूं, अल्लाह ताला ने फरमाया जो भी कयामत तक होने वाला लिख दे, और उसे लिखना शुरू कर दिया, कलमा कुन से अल्लाह ताला ने उसको सारा कुछ लिखवा दिया। तो अगर हमें इसका एतबार हो ना, अगर हमें इस चीज पे यकीन हो, तो फिर हमें शकूक को शुभात ना हो, फिर हमें क्यों कैसे ये ना हो, असल में शकूक आते ही इसलिए है कि हमें अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा नहीं है कि वो तो कुन कह के करने वाला है, मेरे मसले कैसे हल होंगे, ऐसे तो कभी हल हो ही नहीं सकते, क्यों क्यों नहीं हो सकते, अल्लाह ने सिर्फ कुन कहना है और हम सबके मसाइल हल हो जाने, तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह जो भी हमारे मसले हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, है अल्लाह उनके हल के ऊपर कलमा कुन फरमा दे, जो भी बीमारियां हैं उनके लिए शिफा के लिए कलमा कुन फरमा दे अल्लाह, जो भी हमारी हाजतें हैं, जो भी हमारी दुआएं हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए कुन फरमा दे, उसके लिए इतना आसान है, तो जानने कि आपका रब कौन है। और जानने जरूर कि वो अला कुल्ली शई इन कदीर है। कुल्ली शई इन, कुल्ली शई इन, कुल्ली शई इन में क्या कोई चीज रह जाती है? हमारी अकल छोटी हो सकती है, हमारी अकल नहीं पहुंच सकती कुल्ली शहीन तक। कुल्ली शहीन इतना बड़ा कलमा हो गया ना, कुल्ली शहीन ये दो अल्फाज, इतनी बड़ी कायनात को घेरे में ये अल्फाज कुल्ली शहीन, तो हम तो बयान भी नहीं कर सकते वो क्या क्या कर सकता। तो मैं और आप क्या चीज है? अच्छा एक इब्ने अब्बास का कॉल मुझे याद आ गया, बड़ा ही प्यारा कॉल, कि ये जमीन, सातों जमीनें, आसमान, जो कुछ इसमें है, जितनी पूरी कायनात है ना, जितनी पूरी कायनात है, सोचें तसव्वुर करें कि इस कायनात को अभी तक इंसान पा नहीं सका, ये कायनात कितनी है। ये सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह के हाथ में ऐसे है जैसे कि एक जर्रा, और जर्रे की मिसाल ऐसे दी जैसे आपकी खिड़की में से वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते ना, आपको रोशनी में नजर आते, धूप आ रही होती उसमें नजर आ रहे होते ना, वो छोटे छोटे, वो एक जो है पार्टिकल, वो अल्लाह ताला के हाथ में ये जमीन और आसमान और कायनात ऐसी है जैसे वो पार्टिकल। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और इस अगर वो एक पार्टिकल है तो जमीन क्या होगी, और मैं और आप क्या होंगे अल्लाह के आगे? जब खड़े होते ना नमाज में, उस वक्त सोचा करें, अल्लाह मैं इतनी छोटी हूं, अल्लाह मैं इतनी छोटी हूं, ये इन बातों को सोचा कर, अल्लाह मैं इतनी छोटी हूं, मैं कितनी मामूली हूं, कितनी हकीर हूं, अगर पूरी कायनात ऐसी है तो मैं क्या हूं? और वो इतनी बड़ी जात है जिसने किसी भी काम जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल, हम कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, उसने सिर्फ कहना कुन। वो जात कितनी अजीम है फिर, वो जात कितनी अकबर है फिर, जिसके हाथ में ये एक, वो मैं उसको पता नहीं उसको क्या कहते होंगे, उसको जर्रा भी हमारे नजदीक कोई बड़ी चीज शायद हो सकती है, कि ये पार्टिकल जो है, इतनी मामूली जर्रा जो है, इस तरह है कायनात अल्लाह के हाथ में। सुभान अल्लाह। तो फिर क्यों अपने मसाइल के ऊपर हम ये सोच लेते हैं नहीं है इनका कोई हाल, नहीं ये हो सकता, सब कुछ हो सकता है अल्लाह के इज़्ज़त से। तो उसने बस कहना है कौन तो हो जाना है, तो है मरियम आप क्यों इसकी फिक्र करती, और वो बच्चा कैसा होगा, वो ऐसा, आप देखें अभी और इसकी तारीफें इस बच्चे की चल रही हैं, अभी खत्म नहीं हुई, वो कैसा होगा। وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, और अल्लाह उसको तालीम देगा, उसको यानी इस बच्चे को कौन तालीम देगा, अल्लाह, वही अल्लाह जिसकी पहले बात आ रही है, अल्लाह ताला उसको तालीम देगा किस चीज की, अल किताब, किताब की, क्या है किताब, किताब से मतलब पिछली किताबें भी हो सकती हैं, किताब से, लेकिन दूसरा माना कतबा का होता है लिखना, लिखाई, तो किताबत यानी लिखना सिखाएगा अल्लाह ताला उसको, और पिछली किताबों की तालीम सिखाएगा अल्लाह ताला उसको। तो अब कहने को ये बात बड़ी लगती है, लोग बाज दफा कहते हैं कि हाय बच्चा हो जाएगा, कौन इसकी तालीम का करेगा, कौन इसको सिखाएगा, कौन इसकी तरबियत करेगा, कौन इस, हमने देख लिया ना, वो बड़े बड़े माँ बाप भी होते हैं तब भी वो तो नहीं बच्चों की तालीम कर सकते, कितना जोर लगाते हैं नहीं बच्चा पढ़ता, और कहीं टाट के किसी स्कूल में बैठा हुआ बच्चा कहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक पहुंच जाता है, हार्वर्ड तक पहुंच जाता है, ऑक्सफोर्ड तक पहुंच जाता है, कौन सिखाता है, इल्म कौन देता है, अल्लाह। ये इंसानों को हाँ कोशिश कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं, सबब इख्तियार कर सकते हैं, मगर इल्म अल्लाह ने देना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि आपने कोशिश करनी है, लेकिन साथ दुआ क्या करनी है, रोब बिजी दिनी इल्मा, दुआएं अल्लाह से करनी है, अल्लाह है इल्म देने वाला। इमाम इब्ने तैमिया जब कुरान में कोई बात समझ नहीं आती थी ना, तो दुआ किया करते थे, ए इब्राहिम को इल्म देने वाले मुझे भी इल्म दे दे, ए सुलेमान को इल्म देने वाले फहम देने वाले मुझे भी फहम अता फरमा दे, ये उनकी दुआएं होती थी। तो इसलिए इल्म अल्लाह देता है, इल्म के लिए उसकी तरफ नजर रखनी चाहिए कि अल्लाह अपने इल्म के खजानों में से मुझे भी थोड़ा सा अता फरमा दे। तो अल्लाह सिखाएगा उनको किताब, क्योंकि हजरत मरियम देखिए अब ये सोच रही होंगे कि बिन बाप के बच्चा इसको कौन देखेगा, क्या होगा। अल्लाह ताला ने इसकी तालीम का इंतजाम भी अपने जिम्मे ले लिया। जहां तक पालने की बात थी, आप देख लें हजरत मरियम को की नशोनुमा किसने की, हमने पिछले सबक में पढ़ा था, अल्लाह ने। इसीलिए आप देखें दुनिया में बाज बच्चे होते हैं, माँ बाप दोनों फौत हो जाते हैं और वो बच्चे अल्लाह पालता है ना, ऐसा तो नहीं होता जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं वो बच्चे में मर जाते हैं। वल हिकमत, और हिकमत, हिकमत सिर्फ चीजें पढ़ने से नहीं आ जाती, विजडम, विजडम, विजडम भी इसका मतलब किया गया और इसका मतलब नाफे इल्म भी किया गया, नफा मंद इल्म। विजडम क्या होती है, हिकमत क्या होती है, कि इंसान को सही वक्त पे सही फैसला करना आ जाए। ये नहीं है कि जैसे हमने पढ़ लिया होता है ना, फिर उसके बाद जब अमल का वक्त आता है तो क्या होता है, वो ये भूल ही जाता कि हमने क्या पढ़ा था, बाद में याद आता वो इस टाइम पे तो ये अमल करना था। ये नहीं, हिकमत भी अल्लाह की देन, युतिल हिकमत मैयशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला से हिकमत भी मांगनी चाहिए, हिकमत खैर और शर में तमीज भी है, इंसान को पता चले कि खैर क्या है और शर क्या है। और तौरात और इंजील, इन दोनों का भी इल्म अल्लाह ताला उनको सिखाएगा, और ऐसा अल्लाह ने सिखाया था कि ईसा अलैहिस्सलाम हाफिज थे तौरात के, और इंजील तो उन पे ही उतरी थी, उसके हाफिज थे। तो कितनी डिग्रियां अल्लाह ताला ने बता दी कि इतनी डिग्रियां होंगी ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ये कितनी बड़े ऑनर की बात है, इल्म का मिल जाना, यानी इल्म को अल्लाह ताला ने, इससे इल्म की अहमियत पता चलती है। इल्म को अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए फरमाया, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह उनको इतनी दौलत देगा, इतनी बादशाहत होगी, इतना ऐसे होगा, इल्म की बात की है। कदर मंजिलत समझ आती है इल्म की, कि अल्लाह के हाँ कितनी इल्म की अहमियत है, पैगंबर के लिए ये फरमाया। वरसूलन इला बनी इसराइल, और रसूल होंगे बनी इसराइल की तरफ, वो रसूल बनेगा बनी इसराइल की तरफ, यानी आज जो ये लोग दुनिया जहान के अंदर अपने दीन की दावत देने के लिए घूमते हैं, तो याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत की तरफ रसूल बना के नहीं भेजे गए, सिर्फ बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। उनको ये नहीं कहा गया था आपने पूरी दुनिया में फिर फिर के ये मजहब फैलाना है, क्या? तो ये खास थे, सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी दुनिया में आने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से पूरी इंसानियत के लिए नबी बना के भेजे गए। अरसलना का लिन्नासी रसूल, अल्लाह ताला ने फरमाया आपको पूरी सब इंसानों के लिए रसूल बनाया गया, सिर्फ एक कौम अरब के लिए नहीं बनाया गया था। तो ये तो इनका है ही नहीं था काम, अगर डेडिकेशन से कर रहे हैं तो, रसूलन इला बनी इसराइल, ये भी बता दिया कि बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजे गए हैं। तो अब आप इससे यहां तक आप देखें कि कितनी सारी फजीलतें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और अगर कोई आज ईसाई बनी इसराइल से बाहर जाके तबलीग करता है तो वो तो इन इसके खिलाफ हो गया। हिकमत, दानाई, और इतना ज्यादा इनको तौरात का इल्म था कि जब बड़े बड़े उलमा इनसे बात करते थे तो डायरेक्ट जो आयात थी तौरात की वो कोट करते थे, हिफ्स भी थी इनको, जहीन भी बहुत थे, लिखना भी इनको आता था ऐसा, और अब बहुत खूबसूरत लिखाई थी इनकी, अपने हाफजे से तौरात लिखा करते थे, और ऐसे ऐसे दलायल देते थे उलमा को कि वो बिल्कुल लाजवाब हो जाते थे। तो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ अल्फाज को पढ़ लेना ये इल्म नहीं हो जाता, सिर्फ कुराने पाक के लफ्जी तर्जुमे को रट लेना इल्म नहीं हो जाता, ये काफी नहीं है। जब तक के उसके जरिए फिर हिकमतें ना आए, जब तक के उसकी डेप्थ ने ना जाए, गौर और फिक्र ना करे, तभी पता चलेगा ना कि सही क्या है और गलत क्या है, तभी तो हिकमतों के खजाने खुलेंगे ना, तभी तो नफामंद इल्म बनेगा ना। और नफामंद इल्म और कैसे बनता है, जब इंसान उसको अप्लाई करता है तब नफामंद होता है, वरना क्या है, या आपने रजिस्टर भर भर के रखते रहे, फोल्डर बनाते रहे, हर पारे के खूबसूरत नोट्स बना के रखे हुए, वो नफामंद तो नहीं है, वो तो बस एक बोझ हो जाएगा। जैसे आगे आप अल्लाह ताला खैर रखे तो जब हम आगे पढ़ेंगे सूरह जुमा में, अल्लाह ताला ने यहूद की मिसाल दी है कि उनके लिए इल्म कैसे है, जैसे गधे के ऊपर आप कोई चीज भार डाल दें तो उसको पता ही नहीं है, उसको नहीं पता मैंने किताबें उठाई हुई हैं या मैंने रेत उठाई हुई है या मेरे ऊपर पत्थर डाले हुए, उसके लिए बस बोझ ही है। इसी तरह फिर वो इंसान है जो अपने इल्म से फायदा नहीं उठाता, उस पर अमल नहीं करता, उसके लिए ये इल्म भी बोझ है, बस उसने किताबों का बोझ उठाया हुआ, आपने रजिस्टर भर भर के रखे में, एक आपके घर में इजाफी जगह ही ले रहे हैं वो, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, क्या फायदा हुआ फिर। तो उनको वहां पे कंडेम किया गया कि ऐसे इल्म का फायदा नहीं है, इल्म वो ही है जो अमल में आ जाए। अब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और वो जवान हो गए, उनको नबुव्वत मिल गई। अब क्या है, अब आगे ईसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग हैं ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोट किए हैं कि उन वो मुजजात जो लेकर आए थे, अन्नी बेशक मैं, कद जी तो को मैं लाया हूं तुम्हारे पास भी आयत मैं रोपे को, एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से, और एक निशानी का मतलब क्या है, मुजजात। तो उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुजजात लाया हूं अल्लाह ताला के पास से। और मोजा किस लिए अल्लाह ताला देते हैं, मोजे का मकसद क्या होता है, मोजे का मकसद रिसालत की तस्दीक होता है कि ये वेरीफाई हो जाए कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए, क्योंकि मोजा क्या होता है, आजिज करने वाली चीज, और वो लोगों को आजिज कर देता है, कोई उसका तोड़ नहीं ला सकता, कोई उसको बयान नहीं कर सकता कि ये कैसे हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से ही हो सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जो चीज। अब देख लेना मूसा अलैहिस्सलाम को मोजा मिला, आसा जो है वो सांप बन रहा है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अब जो ईसा अलैहिस्सलाम के भी मोजे हैं आप देखेंगे ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो मोजा आजिज कर देता है लोगों को कि लोग मानने पर मजबूर हो जाएं कि अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल है, और ये जो बात कह रहा है ये अल्लाह ताला ने फरमाई है, ठीक है, ये होता है मोजे का मकसद। मोजे सिर्फ लोगों को मैस्मराइज करने के लिए, उनको बस मुतासिर करके और अपना बनाने के लिए, इसके लिए नहीं होते कि लोगों को खुश किया जाए, जरा तमाशे दिखाए जाए, इसलिए नहीं होते मोजे, ये जादूगरों का काम होता है, उनका काम होता है लोगों को एंटरटेन करना, मोजे लोगों की एंटरटेनमेंट का काम नहीं करते, ठीक है। अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीनी का हैयतुत तैर, मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए मट्टी से मानिंद, एक मानिंद शक्ल के एक परिंदे की, फअनफुखु फी, तो मैं फूंक मारूंगा इसमें, फयकूनु तैरन बिइज्निल्लाह, तो ये हो जाएगा परिंदा अल्लाह के इजन से। अब ये उनको अल्लाह ताला ने मोजा दिया था, क्या कि वो एक मट्टी लेते थे और गीली मट्टी लेके उससे परिंदे की शक्ल की तरह एक चीज बनाते थे और उसमें फूंक मार देते थे और अल्लाह के इजन से वो जिंदा हो जाता था। अब ये देख लेना, अब ये ऐसी बात तो कोई भी नहीं कर सकता, जो कोई देखे उसको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वाकई ये तो अल्लाह के रसूल ही है, कि वाकई ये जो ये तो ना जादू से हो सकता है ना किसी और चीज से। तो क्या इस तरह से मट्टी से परिंदे बनाना या इस तरह से करना, ये स्कल्पचर्स बनाना क्या अलाउड है? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। फिर ईसा अलैहि सलाम ने क्यों बनाया? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज्जत से, क्योंकि ये मोजज़ा था। हदीस में, हदीस कुदसी है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी खल्क की तरह तख्लीक करे। तो ये अलाउड नहीं है कि इंसान मूर्तियां बनाए या इंसान हाथों से ऐसी तस्वीरें बनाए जो कि मुकम्मल हो। अगर बनानी भी हो इल्म लेने के लिए, तो इतनी बना सकती हैं जिसमें जो मुकम्मल ना हो, जो अधूरी हो। मसलन नाक नहीं है, होंठ नहीं है, आंखें ही नहीं है, या ऐसी कि मतलब अधूरी सी हो, लेकिन डिटेल में जाके उसको बनाना ये अलाउड नहीं है। इस तरह इन प्रोफेशंस की तरफ भी नहीं जाना चाहिए जिनमें ये चीजें हो, किसका स्कल्पचर्स बनाने हैं, सामने बिठा बिठा के पूरी एक एक डिटेल के अंदर जाना है, ये हमारे दीन में नहीं अलाउड। फअनफुखु फी फयकून तय्यिरन बिइज़्निल्लाह वअब्रिउल अकमह वल अबरस वअहलील मौता बिइज़्निल्लाह। और मैं अच्छा करता हूं मादरजाद अंधे को, यानी पैदाइशी कोई अंधा, उसको हाथ फेरते थे और वो देखने लगता था। वल अबरस, और कोढ़ी, लेप्रसी जो थी ना दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह जिस बीमारी का आजकल ये चर्चा है, अल्लाह ताला इसको दुनिया से जल्दी खत्म कर दे, मगर लेप्रसी जो थी ये इस कदर लॉन्ग टाइम तक लोगों को इसका कोई इलाज नहीं था, हजारों साल तक ऐसे लोगों को लोग अलग कर देते थे, शहरों से निकाल देते थे, उनसे कोई मेल मुलाकात, कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, क्योंकि हमें भी ना लग जाए, कंटेजियस बीमारी थी। तो वो लोगों के ऊपर हाथ फेरते थे कोढ़ी पे और वो ठीक हो जाता था, जबकि इसका कोई इलाज नहीं था वहां पे। तो अल्लाह ताला जब चाहे किसी बीमारी का इलाज अता फरमा दे, लेकिन वो ऐसे वक्त में जिस वक्त किसी बड़े से बड़े हकीम और उनको कोई इलाज नहीं मिलता, तो वो सिर्फ हाथ फेरने से ठीक कर देते। वअहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे को जिंदा कर देते थे, चाहे वो मुर्दा अभी रिसेंटली फौत हुआ हो या हजारों साल से फौत हुआ हो, उसको जिंदा कर देते थे। मगर कहते हैं बिइज़्निल्लाह मैं करता हूं। इसमें एक चीज क्वेश्चन है कि क्यों उन्होंने इसी किस्म के मोजज़ात दिखाए कि वो उनको जिंदा करके दिखा रहे हैं, अंधे को ठीक कर रहे हैं, कोढ़ी को ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों दिखाए? इसलिए क्योंकि वो टाइम मेडिसिन का था, मेडिसिन बहुत ब्लूम कर रही थी, बहुत ज्यादा तिब के अंदर बहुत लोग माहिर थे, बहुत जबरदस्त थे, और उसी का दौर दौरा था, जैसे आज साइंस का दौर दौरा है। आज साइंस के ऊपर सारी, जो आप चीज साइंस से निकाल के ले आते हैं, लोग कहते हैं हाँ भाई उसको मान लो क्योंकि साइंस ये कहती है, हर चीज में ये देखते हैं। या टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, उस जमाने में मेडिसिन का दौर दौरा था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जादू का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में शायरी का था। तो अल्लाह ताला ने मोजज़ात भी रेलिवेंट दिए ना, इररेलिवेंट मोजज़ात होते तो कौन देखता, रेलिवेंट जो उस जमाने में लोग जिनको बहुत बड़ी चीज समझते थे, हकीम बड़े बड़े होते थे, लेकिन उनसे भी इसका इलाज नहीं निकल रहा था। और आज तक देखें इलाज नहीं है, अंधा जो पैदाइशी अंधा है उसका कोई इलाज नहीं है कि कोई इलाज करके उसकी आंखें ठीक कर दी जाए। नहीं, ट्रांसप्लांट के लिए भी देखिए कितना मुश्किल है, लेकिन उसकी अपनी आंखों को कोई ठीक नहीं कर सकता। इसी तरह मुर्दे को जिंदा करना, कितनी साइंस ने तरक्की कर ली, आज तक ये नहीं हो सका। मट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारना, ये तो मोजज़ात है, सरासर मोजज़ात है। तो वो साथ साथ कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, इंजील में ये बातें हैं लेकिन बिइज़्निल्लाह के लफ्ज नहीं है। सोचे आप जरा उन्होंने किस तरह से तहरीफें की हैं। तो बिइज़्निल्लाह हर दफा कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, क्यों? इसलिए कि वो बताना चाहते हैं कि मेरी अपनी ताकत नहीं है, मैं कोई चीज नहीं हूं कि मुझे को पूजने लगे, अल्लाह की इबादत करूं, क्योंकि ये सब उसके इज़्ज़त से हो रहा है। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक बात अपने लिए हम ले सकते हैं कि हम छोटे छोटे काम भी करते हैं ना, कोई खाना अच्छा बना लेंगे, या कोई अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या कोई कोई भी अच्छा काम कोई कर लेंगे तो लोग तारीफ करते हैं, तो हम भी इतने ला नहीं कहते, हम वमा तौफीक इल्ला बिल्ला नहीं कहते कि मेरी तो कोई तौफीक नहीं, मगर अल्लाह ने दिया ये अल्लाह ताला का करम है। ये भूल जाते हैं कि उस नेमत को या उस चीज को जो हम कर पाए हैं उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें। हमेशा किसी भी कोई भी आप काम कर पाए ना, तो वो वाकई अगर सोचे वो वाकई अल्लाह ताला के करम के बगैर तो नहीं हो सकता था। अल्लाह ना चाहता तो मैं और आप कहां से कोई चीज कर सकते हैं, हम तो एक सांस तक नहीं खुद ले सकते, ये भी इज़्ज़ने ला है तो कहां हम क्रेडिट लेते फिरते, हाँ नहीं जी मैं तो बड़ा अच्छा बोलती हूँ, हाँ नहीं जी मैं तो बड़ा अच्छे ये काम करती हूँ, हाँ नहीं मैं तो लायक ही बहुत हूँ, हाँ नहीं तो मैं मेहनत ही बहुत करती हूँ। नहीं भी इतने ला, और ये सिर्फ मुंह की बात नहीं होनी चाहिए कि बस एक स्टेटमेंट है वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, बस हमने ये सीख लिया और हमने इसी को कह दिया। नहीं, दिल से ये पुकार होनी चाहिए कि मेरा कोई कमाल नहीं, सब अल्लाह की तरफ से, मैं क्या, मैं तो अल्लाह ना चाहे तो एक लफ्ज भी क्या अदा कर सकती हूँ मुंह से, मेरी क्या काबिलियत है। तो अपनी नालायकियों पे इंसान सोचे ना तो सब वो हो जाता है कि देखो मैं क्या क्या उल्टे सीधे भी काम करती हूँ, क्या क्या मेरी नालायकियां, मैं तो ये समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती, और मैं किस बात का क्रेडिट लेती फिर। तो इतने बड़े पैगंबर हो के लोगों को अपने सामने ये मुजजात दिखा के खुद नहीं फूले नहीं समा रहे कि मैं कितनी बड़ी चीज हो गया हूं, देखो ना फिर आखिर मेरा कमाल, देखते ही रह जाओगे, ऐसे कहते हैं ना लोग अल्फाज, क्या बात है फिर मेरी, को तुम मेरे साथ रहोगे तो बड़ा कुछ देखोगे, ऐसे इस किस्म के डायलॉग मुतकब्बिराना है। और ये देखे आजी, ये आयात भी आजी सिखाती है, इतने बड़े कारनामे जो कि कोई आज तक ना कर सका उसके ऊपर भी कह रहे हैं भी इतने ला। पैगंबरों का उसवा जो है, पैगंबरों की जिंदगी जो है उससे हम सीखते हैं। मैं और आप क्या कर लेते होंगे, कौन से ऐसे कारनामे हमने कर कर दिए, फिर भी उन जो छोटे लोग हैं ना आप तो बस इन्हीं चीजों के ऊपर फूलते रहते हैं, जो बड़े लोग हैं उनके अंदर जो जितना बड़ा होता है, वो कहते हैं ना जो बर्तन खाली होता है वो बचता बहुत है, जो भरा हुआ होता है वो बचता नहीं है। तो जो बर्तन खाली हो कुछ है ही नहीं, तो अपने वो कारनामे बयान करते रहना, अपनी ही चीजों के ऊपर फूलते रहना, खुश होते रहना, अपना आप को ही बड़ा बताते रहना, या कोई तारीफ कर दे तो उसके ऊपर ही फूलते रहना, ये छोटे लोगों का काम होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर वह उनबी हुकुम बीमा तकुलून व मा तत्तखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें खबर देता हूं उसकी जो तुम खाते हो, वा मा तद्दाखिरुना, और जो तुम जखीरा करते हो अपने घरों में, यानी आप क्या खा के आए हैं मैं इसका तुम्हें बता देता हूँ। तो यानी कोई घर से कोई लंच करके आया है, कोई भूखा है, क्या खाया आज उसने, या घर में क्या स्टोर किया हुआ, अब हमें तो खुद भी नहीं याद रहता हमारे फ्रिज में क्या पड़ा होता, कभी पीछे कोई चीज पड़ी रह जाए तो खराबी हो जाती, वो याद ही नहीं रहता। वो कहते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर में क्या स्टोर किया, फ्रीजरों में चीजें पड़ी रह जाती, अब हमारे फ्रीजर में कितनी चीजें हो जाती, वो कहते हैं मैं बताऊंगा कि तुमने क्या मसलन है आपके फ्रीजर में है फ्रिज में है, वो उसको बता सकते थे। और यहाँ घरों में क्या और स्टोर किया हुआ, बेसमेंट में क्या स्टोर हुआ वह, अलमारियों में क्या कपड़े स्टोर हुए हैं, या क्या और चीजें स्टोर हुई हैं, तो वो जो जखीरा किया हुआ है उसका भी बता दूंगा। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल्लकुम, इसमें एक निशानी है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, तो इस ये सब अल्लाह की तरफ से, मगर इन बातों का इन निशानियों का भी फायदा कौन उठा सकता है, जो ईमान रखने वाला, यानी क्या मतलब ईमान लाने वाला, जिसका मिजाज ऐसा है, जिसकी नेचर ऐसी है कि दलील को मान के और फिर तकबुर ना करे, जिद न में ना आ जाए, हठधर्मी। जैसे कई लोगों को ना आप कितना मर्जी बता दें, कितना मर्जी समझा दें, उनके सामने चीज रख देंगे, वो उन्होंने कहना नहीं मैं ना मानू, उन्होंने मानना ही नहीं है। तो जिनके अंदर जिद हो तो फिर आप उनको सूरज भी दिखा देंगे ना कि सूरज चमक रहा, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो सूरज आई नहीं। जिद वाले को नहीं आप मनवा सकते, जिसमें हठधर्मी हो या जिसमें तकब्बर हो कि मैं क्यों मानू। आप उसको आप जो मर्जी दलाइल दे दें, आप निशानियां कुछ भी दिखा दें, कुरान की आयतें लोगों को दिखाई जाती नहीं मानते, हदीस दिखाई जाती नहीं मानते, क्या चीज होती है? बस जिद, मैं क्यों झुकूं इसके आगे, तकब्बर अपने अंदर कि मेरे पास इतना नॉलेज है मैं क्यों। तो अगर ये चीजें हो ना फिर नहीं इंसान मानता, फिर उसका कोई इलाज नहीं। हाँ जो ऐसा इंसान है कि जिसका मिजाज ये है, उसने देखा, उसने कहा हाँ वाकई ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकता है, और आप वाकई अल्लाह के पैगंबर है। आप अगर आम इंसान होते, दूसरे इंसानों की तरह होते, तो आप ये नहीं कर सकते थे, तो वाकई अल्लाह ताला ने आपको ये कुदरत दी होगी। तो वो मोजे में अल्लाह की कुदरत को पा लेते हैं। अच्छा आप कई लोग पैगंबर सिर्फ मोजा दिखा सकते हैं, उसके बाद जो आम लोग हैं उनको नेक लोगों से करामात भी जाहिर हुई, तो कई लोग जब उनकी करामतें देखते हैं तो बस उनके आगे ही झुक जाते हैं। नहीं आप ही बड़ी चीज है, किसी को ऐसे को देख लें, किसी से कोई करामत जाहिर हो गई तो बस उसको पूजने लग शुरू कर देते। नहीं उससे भी अल्लाह तक जाएं, जैसे जकरिया अलैहि सलाम ने हजरत मरियम को देखा बेमौसमे फल, तो वो उनकी तरफ नहीं झुक गए, अल्लाह की तरफ झुके। ठीक है, तो किसी में कोई करामत, कोई ऐसी आप गैर मामूली चीज देख लेते, अल्लाह की तरफ झुका करें, उस बंदे के साथ नहीं अटैच हो जाए कि मैं तो बस इसको ही बस अब पूजने लगू, इसके आगे ही झुक जाऊं, इसी को कहूं तुमने ही मेरे काम कराने हैं, तुमने ही मेरी दुआएं भी करनी है, अब तुम्हारा जिम्मा है भाई, ये नहीं सही। आप देख रहे ना वो सारा वक्त अल्लाह के साथ जोड़े हैं, इन्ना फी ज़ालिका ला आया, इसमें एक निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान लाने वाले। तो ये होती है दावत का तरीका कि लोगों को अल्लाह से जोड़ा जाए, अपने आप से ना जोड़ लें। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये निशानी है तुम्हारे लिए, तुम पहचान लो मैं अल्लाह की तरफ से रसूल आया। और बनी इसराइल के पास ये आखिरी रसूल आए थे, इनके बाद कोई रसूल नबी बनी इसराइल में नहीं आया, और अल्लाह ताला ने इनको भी इसलिए भेजा कि लोग समझ जाएं, लोग जो हैं अब ये बात को इतराफ कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से रसूल आए हैं और हमने अब अपनी इसलाह करनी है इनके अंडर रह के, क्योंकि वो उन्होंने बहुत नबियों को कत्ल किया था, बहुत इनके जवाल का टाइम था, कानून को तो बड़ी सख्ती से पकड़ते थे, बड़े उसकी बाल की खाल उतारते थे, मगर अपने अंदर कोई रूहानियत नहीं थी, कोई अल्लाह की मखलूक के लिए रहम शफकत हमदर्दी कुछ नहीं थी, बस एक बेजान सा ढांचा दीन के नाम का लेके बस उस पे सख्तियां करते थे। यही थे ना ईसा अलैहि सलाम, एक दिन उन्होंने देखा कि लोग एक औरत को पत्थर मार रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको कह कि ये जानिया है, तो उन्होंने वहां से गुजर रहे थे तो फरमाया कि इसको पत्थर मारे वो जिसने कभी खुद जिना ना किया, तो सब ने हाथ नीचे कर लिया, ये हाल था इनका, और चले गए सर झुका के। ईसा अलैहि सलाम ही फरमाते थे ना इन लोगों का हाल देख के, फरमाते थे कि तुम साबत ऊंट जो निकल वो छान जाते हो और कुछ ऐसे था, और मच्छरों को छानते रहते हो और साबते ऊंट निगल जाते हो, इस तरह की कोई बात थी, यानी बड़े बड़े काम कर लेते हैं ना, छोटे छोटे कामों के ऊपर बाल की खाल उतारते रहते हैं। सूद इनके अंदर इतना ज्यादा था, एक दफा आए और देखा कि ये सूद के ऊपर कर रहे हैं, तो उन्होंने टेबल्स टर्न कर दी थी, इतने ज्यादा मुखालिफ थे इसके। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة سنية.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين